नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी संगति में कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो हम सबके जीवन के लिए अति आवश्यक और लाभकारी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि एक धर्मी व्यक्ति अपने पड़ोसी की चिंता करता है, उसकी सहायता करता है, परंतु दुष्ट हानि पहुंचाने की योजना करता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमें से प्रत्येक के जीवन से बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम फिर से आपके जीवित वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हर एक श्रोता भाई बहनों के जीवन को आप अपने नियंत्रण में ले लें, प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो हम दूर दराज में बैठे हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, शहरों में, गांव में, जहां कहीं भी हैं, आपके वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, बच्चों को लेकर। पिताजी, आप उनकी सहायता करें ताकि आज का वचन प्रत्येक के जीवन में आशीषों को लाने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नीति वचन की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 12 अध्याय उसका 27 पद। लिखा है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। मुझे यह वचन अति विनोदी प्रतीत होता है। इसने शिकार मारा, परंतु उसे साफ करके खाने के लिए पकाया नहीं। इसी प्रकार मछुए ने मछली तो पकड़ी, परंतु साफ करके उसे पकाया नहीं। कहने का मतलब है कि आप आलसी वाला काम कर रहे हैं, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। दूसरे शब्दों में वह अपने वस्तुओं को संभालता है। हम रूत के बारे देखते हैं। रूत अनाज की बालें उठाने बोअज के खेत में गई और बोअज की दया दृष्टि के अधीन उसने बहुत अन्न उठाया, परंतु उसने घर लाकर उसे नौमी पर नहीं डाल दिया, वरन स्वयं उसे साफ किया। उसने यह नहीं कहा कि वह दिन भर काम करके थक गई है। अब कम से कम इतना काम तो नौमी कर सकती है। इससे उसकी प्रवृत्ति प्रकट होती है। आज हम कई घरों में बहुओं को देखते हैं, वे काम करती हैं परंतु कुड़कुड़ाती हैं, अपनी सास को सताती हैं, और यही कारण है कि उन्हें इस प्रकार के चरित्र नहीं मिलते हैं। मेरे मित्रों, घर के काम में सहायता करने से कुछ नहीं घटता। मैं अपनी माता से कहता था कि मैं बड़ा होकर कभी बर्तन नहीं धोऊंगा, परंतु मुझे अब भी बर्तन धोने पड़ते हैं। शायद यह मेरा दूसरा बाल्यकाल है, क्योंकि मैं घर में पत्नी को सहायता करना चाहता हूँ। जब मुझे अवसर मिलता है, मैं खाना भी पकाता हूँ। नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। परमेश्वर के संतान के लिए एक अद्भुत मार्ग, एक अनुपम भावी आशा है। यदि प्रभु ना आए तो शारीरिक मृत्यु अवश्यम भावी है, परंतु उसके बाद अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर नीति वचन अध्याय 12 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 13 से देखेंगे। हम अभी जीवन के महान सिद्धांतों के परिशिक्षण के भाग में ही हैं, तो आइए आप मेरे साथ नीति वचन 13 उसके 1 पद को पढ़िए। लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। यद्यपि सुलेमान दाऊद का चहेता पुत्र तो नहीं था, परंतु सुलेमान उसकी आज्ञा मानता था। वह एक बुद्धिमान पुत्र का आदर्श है जो पिता की आज्ञा मानता है। रहोबियाम सुलेमान का पुत्र है, उस निंदक का उदाहरण है जो किसी की बात नहीं सुनता। वह नीति वचनों के अंधकार पक्ष या नकारात्मक पक्ष का हमारे लिए एक उदाहरण है, परंतु धर्मशास्त्र में और भी उदाहरण पाए जाते हैं। नीति वचन 13 उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आज की कुछ चर्चाएं मूर्खता भरी हैं, उन्हें व्यर्थ की बातें कहा जा सकता है। उनमें दो अर्थ होते हैं। ऐसे दो अर्थों के चुटकुले मसीही वातावरण में भी प्रवेश कर चुके हैं, जो यौन संबंधित विषयों पर आधारित होते हैं। मैंने देखा है कि अनेक जन यौन शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं, परंतु उनके परिवार टूट जाते हैं। पति किसी और स्त्री के साथ भाग जाता है तो कभी पत्नी किसी पति के साथ भाग जाती है। मेरे विचार में अधिकांश समस्या ऐसे संदिग्ध जीवन और संदिग्ध बातों का परिणाम है। हमें यहाँ इसी बात की चेतावनी दी गई है। युवाओं को चिताया जा रहा है कि इससे वे सावधान रहें। नीति वचन 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। आपको स्मरण होगा कि प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकी की कलीसिया को अति उचित लिखा था, क्योंकि वहां कुछ धर्मी जन थे जो कहते थे कि वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में थे, अतः वे काम करना छोड़कर निष्क्रिय बैठ गए। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस ने कहा, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम काम ना करने वालों के लिए भोजन का प्रबंध ना करें। हमें परिश्रम करना आवश्यक है। यदि आप वास्तव में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं तो आप और भी अच्छे काम करने वाले बनेंगे। आप चुपचाप नहीं बैठेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे, उन्हें अवगत कराएंगे, ताकि वे भी महान सच्चाइयों को देख सके, समझ सके और प्रभु को ग्रहण करने पाए। नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। जी हाँ, यह आंतरिक सत्य के संदर्भ में है। व्यवहारिक धार्मिकता की यह पृष्ठभूमि है। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। वह उसे सहन नहीं कर सकता है। परमेश्वर के संतान को अपने जीवन में कैसे भी पाप को पहचान कर उसका उन्मूलन करना है। आवश्यक है कि हम इसे जानें। हमारा पुराना मनुष्यत्व झूठ बोलने की मानसिकता रखता है। झूठ बोलना हम में अपने आप उत्पन्न होता है। इसे किसी व्यक्ति को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। परमेश्वर कहता है कि उसे इससे घृणा है और वह इसका न्याय करेगा। तो हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोलता। यदि मैं झूठ बोलता हूं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझसे घृणा करता है और मेरा न्याय करेगा। आप यह न कहें कि आज के जमाने में कौन सत्य बोलता है। आप दूसरों की चिंता न करें, परमेश्वर को देखें कि वह आपके साथ क्या करने जा रहा है। नीति वचन 13 उसके 7 पद में लिखा है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। यह हमारे पुराने मनुष्यत्व का एक और उदाहरण है। यदि हम गरीब हैं तो हम अपनी वास्तविकता से अधिक दिखावा करेंगे। कुछ लोग कार में घूमते हैं कि दूसरों पर प्रभाव डालें, जबकि वे उसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे घरों में रहते हैं जो उनकी आर्थिक क्षमता से परे है, जिसका बोझ वे उठा नहीं सकते, लेकिन उस घर में रहते हैं और दिन और रात रोना और रोना होता रहता है। दूसरी ओर कुछ लोग अत्यधिक धनवान होने के बाद भी अपनी गरीबी के लिए रोते रहते हैं। मेरी कलीसिया का एक सदस्य है, जहां पर मैं जाता हूं, बहुत धनवान था, परंतु कलीसिया में दान देने में बड़ा कंजूस था। ये दोनों व्यवहार ही परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं, क्योंकि वे दिखावा हैं, वे वास्तविकता से हटकर दिखावा मात्र है। हमें बड़प्पन और गरीबी दोनों पड़ोसियों का सा व्यवहार करना चाहिए, और हम जो हैं वही दिखाना है, ना कि और कुछ उन्हें दिखाएं। जैसा कि हम सुनते हैं, कहावत है हमारे देश में, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है। जी हाँ, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और अपने जीवन को उसी आधार पर जिएं जैसा वह हमें देता है। नीति वचन 13 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। इसराइल के राजाओं के इतिहास में हमने देखा था कि वहां एक सिद्धांत क्रियाशील था। उत्तरी राज्य में एक के बाद एक राजा बने, परंतु उनकी हत्या होती रही। परमेश्वर यही इन शब्दों द्वारा कहता है, दुष्टों का दिया बुझ जाता है। संसार में ऐसा होता रहता है। हिटलर का अंत अच्छा नहीं हुआ और रूस के स्टालिन का अंत भी अच्छा नहीं था, और हम कई लोगों को जानते हैं जिनका अंत अच्छा नहीं हुआ। नीति वचन 13 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। कहीं भी कला हो, पड़ोस में, कलीसिया में, बाजार में, तो इसका मूल कारण है घमंड। किसी ने कहा, झगड़ा उत्पन्न करने के लिए दो की आवश्यकता पड़ती है, ताली दोनों हाथ से बजती है ना कि एक हाथ से। नीति वचन 13 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। इस वचन को भी अनंत जीवन के प्रकाश में देखना आवश्यक है। इसका मापदंड यही है। अनेक धनवान मनुष्य जानते हैं कि उनकी संतान मूर्ख हैं, अतः उन्होंने ट्रस्ट बनाकर अपना पैसा उसमें डाल दिया है और अपनी संपत्ता के चारों ओर वैधानिक बाड़ा बांध दिया है कि उनकी संतान वहां तक ना पहुंच पाए। उनकी संतान का जीवन निर्वाह उसके द्वारा हो सकता है, परंतु वे संपत्ता पर हाथ नहीं डाल सकते हैं। यही कारण है कि अनेक जन आज परिश्रम करके धनोपार्जन नहीं करते। वे नहीं जानते कि जीवन यापन क्या होता है, जबकि वे अतः संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, परंतु उनसे मूल को सुरक्षित रखा जाता है, अन्यथा वे मूर्खता पूर्वक उसे गंवा देंगे। एक बार हमारे देश के एक महान कलाकार ने, जब वह जेल में थे, तो उन्होंने कहा कि आज पहली बार मुझे पता चला कि भूख क्या है। जी हाँ, कई ऐसे धनवान व्यक्ति हैं जिनको आज यह पता नहीं है कि भूख क्या है। गरीब इस बात को जानते हैं। मेरे मित्रों, इस नीति वचन को अनंत जीवन के प्रकाश में देखें कि सच्चा धन क्या है, धन वास्तव में है क्या, क्या वे आपके निवेश और जमा धन राशियां हैं। वे तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु उन्हें अपने स्वामी से अलग कर देगी। चाहे चोर चोरी न करे, मृत्यु अवश्य उन्हें उससे वंचित कर देगी। वे सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। धनवानों के साथ भी ऐसा ही होगा। आप जितना भी धन इकट्ठा करें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको उसे इस धरती पर ही छोड़ करके जाना है। लेकिन जो कुछ आप ले करके जाएंगे, वह आपका जीवन है, आपके परमेश्वर के निकटता का जीवन, आपका आत्मिक जीवन, आपका आदर्श का जीवन। क्या आप इन धनों को कमा रहे हैं? नीति वचन 13 उसके 12 पद में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। आप केवल आशा ही कर सकते हैं कि दिल दुखाने वाली बात न हो, अतः हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के सामंजस्य में रखना चाहिए, क्योंकि हम आशा तो अनेक बातों की करते हैं परंतु सब कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारे लिए यह अति आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है उसे हम पहचान लें। नीतिवचन 13 उसके 13 से 15 पद में लिखा है, जो वचन को तू जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। नीति वचनों में धार्मिकता और दुष्टता में विषमता दिखाई गई है। परमेश्वर घमंड से, दुष्टता से, दिखावे से घृणा करता है। हमारे मानवीय स्वभाव से उत्पन्न होने वाली कोई भी बात उसके काम की नहीं है, अतः वह हमारे पुराने मनुष्यत्व से की गई किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। हमारे नए मनुष्यत्व से वह जो भी काम करवाएगा उसे वह स्वीकार करेगा। नए मनुष्यत्व कहने का मतलब या तात्पर्य यह है कि हमारा बदला हुआ जीवन संसार की बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का जीवन, उस पर चलने का जीवन, इसे नया मनुष्यत्व कहा गया है जिसे परमेश्वर ग्रहण करता है। वह मेरे पुराने मनुष्यत्व को स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैं एक बुरा व्यक्ति था, मेरा जीवन अच्छा नहीं था, और इसलिए वह उसे उसमें प्रवेश करने नहीं देगा। मैं तो उससे मुक्ति पाकर बहुत आनंदित हो जाऊंगा। स्वर्ग में हमें उस पुराने मनुष्यत्व से मुक्ति मिल जाएगी जो हमारे अनुवांशिक पापों को उबारता है, बार बार हमें उन पुरानी बातों को याद दिलाता है और कुरेदता है ताकि हम उसमें उलझे रहें। आज बहुत से भाई बहन, हमारे जवान उन बुराइयों को स्मरण करके दुखित होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आपको दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास इलाज है। प्रभु यीशु के पास आइए, क्योंकि वह आपके पापों की सजा को उठा लिया है, उसने आपके कारण दुख उठाया है, वह आपको क्षमा कर सकता है, यही एकमात्र दवा है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? यशाया की पुस्तक 66 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जी हाँ, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे तो हमें ऐसा ही बनना है। हम घमंड न करें और न ही उसके वचन और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जाने, क्योंकि वह मुझे और आपको बचाना चाहता है। नीति वचन 13 उसके 17 पद में लिखा है, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। बैरी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दुर्बलताओं का लाभ उठाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है। हमें सत्यनिष्ठ एवं निष्ठावान मनुष्यों की आवश्यकता है। ये साधारण नीति वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक वचन है। नीति वचन 13 उसके 24 और 25 पद में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। मेरे प्रियो, यह बच्चों का मनोविज्ञान है। परमेश्वर के संतान से भी यही कहा गया है, बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। नीति वचन 6 अध्याय उसके 1 पद में भी हम देखते हैं, और पितागण से कहा गया है, इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद में, अपने बालकों को रिस ना दिलाओ, अर्थात उन्हें क्रोध में आकर दंड न दो या उन पर न चिल्लाओ। चित शांत होने पर उन्हें समझाओ कि उन्हें अनुशासन की आवश्यकता क्यों है। जी हाँ, यही कारण है कि मेरे पिता का अनुशासन अच्छा था। वह एक दिन बाद ही मुझे अनुशासन प्रदान करते थे। मैं सोचता था कि मैं बच गया, परंतु नहीं, वह बड़े ही शांतिचित होकर मुझे और मेरे भाइयों को अनुशासन प्रदान करते थे। मैं भली भांति समझता था कि वह क्रोध में ऐसा नहीं करते हैं। अनुशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ अपने पिता के लिए कि उन्होंने मुझे अनुशासन में रखा। मुझे भटकते समय मुझ पर उसने छड़ी उठाई ताकि मैं अनुशासन को सीखकर परमेश्वर के निकटता में आऊं। मेरे प्रिय मित्र, यदि आज आप अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, उस अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज आपके लिए भी अवसर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है। आइए हम अपने मनों को फिराएं, परमेश्वर पिता के उन अनुशासन की बातों को ग्रहण करें, अपने माता पिता का आदर करें और उन महान आशीषों को ग्रहण करें जो परमेश्वर मुझे और आप सबको देना चाहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको बहुताय से आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
एक नजर हो इनायत की मुझ पर, अगर तेरे सजदे में गुजरे मेरी do।